الذين استضعفوا. أعوذ بالله من
Recording in
الشيطان
progress.
الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. हमारे नजीब भाई जो हैं वो अक्सर ये काम कर जाते हैं, अपनी क्लास तो ख़त्म कर जाते हैं लेकिन तार छेड़ जाते हैं, और आज उन्होंने ऐसी तार छेड़ दी है समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें। हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब रहमतुल्लाह अलैह, इनकी ये नज़म तो ये आजिज़ कोई 25 साल से सुन रहा है, क्योंकि हमारे हजरत जो है वो अक्सर अपने बयान के शुरू करने से पहले इस नज़म को किसी अच्छे आवाज़ वाले साथ से पढ़वाते थे, तो हमें भी बड़ी पसंद आती थी और बार बार सुनते थे अक्सर उसको। लेकिन आज जो है इसको सुन करके और उनके अहवाल के बारे में जो बातें पता चली कि बाद में जा करके, तो एक नुक्ता दिल के अंदर आया तो सोच रहे हैं कि आपके सामने भी बयान कर दें। कारी मोहम्मद तैयब रहमतुल्लाह अलैह, ये हजरत कासिम नानुतवी रहमतुल्लाह अलैह के पोते थे, यानी ग्रैंड चाइल्ड जिसको कहते हैं ना। तो हजरत कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह दारुलूम देवबंद के बानी के तौर पर उन्हीं का नाम आता है, और दारुलूम देवबंद जो है ये दीन इस्लाम की जो तजदीदी तहरीकें हैं उनमें इस दौर की अगर वाहिद ना कहें तो सबसे बड़ी तहरीक तो 100% यही है, ये दारुल देवबंद की तहरीक, दीन इस्लाम की तजदीद, यानी जैसा दीन इस्लाम नबी अलैहिस्सलाम लेकर के आए थे बिल्कुल उसी शक्ल में दीन इस्लाम को दोबारा से रीसेट कर देने वाला काम ये दारुल देवबंद से अल्लाह ताला ने लिया, और इसके बानी जो है वो कासिम नानुतवी रहमतुल्लाह अलैह थे। तो इस नस्बत से भी और दूसरी तफासिल से भी साबित होती है बात ये हज़रत कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह को नबी अलैहिस्सलाम के साथ बड़ी खास नस्बत हासिल थी, बड़ी खसूसी नस्बत। तो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि नस्बत की सबसे मजबूत किस्म जो होती है ना वो नस्बत इत्तेहादी होती है, और नस्बत इत्तेहादी जो होती है तो फिर उस वक्त फिर जिसके साथ नस्बत इत्तेहादी होती है तो इसका असर जो है वो सिर्फ इंसान की अपनी जाती जिंदगी में नहीं आता बल्कि उसकी औलादों में भी आता है और उसकी औलादों की औलादों में भी आता है, राइट। जैसे नबी अलैहिस्सलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह के दरमियान नस्बत इत्तेहादी थी, तो नवासों और पोत इन सब के अंदर भी जो है वो वही नस्बत नजर आती है ना, ठीक है। तो उसके बहुत सारे वाकयात अपने अपने हमने हजरत की किताब में से पढ़े भी थे। तो नबी अलैहिस्सलाम के नवासे हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला उनके साथ भी इस तरह के वाकयात पेश आए थे कि उनको एक वक्त जो है वो लोगों ने छोड़ दिया था, तन्हा छोड़ दिया था, और कोई उनकी मदद करने के लिए उस वक्त वहां पर अवेलेबल नहीं था। लोग उनसे एग्री तो करते थे लेकिन उस जगह पर मौजूद नहीं थे उनकी मदद करने के लिए। तो इसी तरह से नजर आता है कि हजरत कासिम नानुतवी रहमतुल्लाह अलैह के भी पोते हजरत मौलाना तैयब रहमतुल्लाह अलैह, कारी तैयब रहमतुल्लाह अलैह के साथ भी इस किस्म के हालात अल्लाह ताला ने पैदा फरमाए कि उनके ऊपर भी बड़ी कड़ी आजमाइश आई, बहुत सख्त आजमाइश आई। अगरचे इसके उनसे एग्री करने वाले तो लोग बहुत सारे मौजूद थे लेकिन कोई उनकी मदद के लिए नहीं आ सका वहां पर, और उनके दिल के ऊपर इतनी चोट पड़ी, इतनी चोट पड़ी जिसका इजहार जो है वो इस नज़म के अंदर उन्होंने किया है, ठीक है। तो अल्लाह ताला आजमाइशें डालते हैं, ठीक है, मुश्किलात आती हैं। तो ये जो नज़म है जिनको समझ में आई, उम्मीद है कि आप में से अक्सर को समझ में आई भी होगी, तो इस नज़म में एक तो उनके अपने ज़ाती अहवाल नजर आते हैं ना कि भाई आजमाइश आई और जो है वो है ना, कोई हमारा पूछने वाला नहीं, कोई हमारी मदद करने वाला नहीं, और आप ही मोहब्बत से काम लेने, आप ही की तरफ एक आसरा है, इस तरह से, ठीक है। तो एक तो उनके इनफरादी पर्सनल हालात थे ना, लेकिन इस नज़म का एक एक जुमला, एक एक मिसरा जो है, वो उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आजकल के अहवाल के ऊपर भी पूरा का पूरा उतरता है। नबी अलैहि सलाम की जो उम्मत है उसके अहवाल भी इस वक्त बिल्कुल ऐसे ही हैं, ठीक है, जैसे कि हजरत कारी मोहम्मद तैयब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जाती अहवाल बयान फरमाए। तो ये उम्मत भी, ये भी किसकी उम्मत है, इस उम्मत को किसके साथ नस्बत है, ये उम्मत मरहूमा है और ये उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है ना। तो उम्मत को भी तो नस्बत फिर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के साथ ही है ना, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर भी ऐसे अहवाल आए, ठीक है, खुसूसन सूरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जो हमने वाकया इफ्क के हालात पढ़े थे, कितने शदीद हालात नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर आए थे आजमाइश वाले, ठीक है। फिर नबी अलैहिस्सलाम की औलादों के ऊपर भी ऐसे हालात है, नबी अलैहिस्सलाम से जिसने मुमासलत इख्तियार करी उसके ऊपर भी ऐसे हालात है, ठीक है ना। तो नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत के ऊपर भी तो ऐसे हालात आते ही है ना फिर, ठीक है ना, क्योंकि उम्मत भी किसकी है, नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत है। हैविंग सेड दैट, फिर हम अपने मौजू के पास के ऊपर वापस आते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह के आखिरी दौर के हालात तो हम पढ़ चुके थे, लेकिन उनके फिर कुछ अखलाक व अहवाल वगैरह वो हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़े थे। आज जो है वो बस एक आखिरी बात पढ़ करके फिर हम मूव ऑन करेंगे, यानी नेक्स्ट खलीफा के ऊपर आएंगे इंशाल्लाह। तो वो ये है कि एक तो बात आपको बतानी थी जो कि शायद आप आदाब की क्लास के अंदर सुनते रहे भी हैं और हो सकता है आपने दोबारा आज भी सुनी हो। तो अबू बकर सिद्दीक रतान का एक खुल्क, सलाम में पहल करना, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, अगर किसी से मिले तो सलाम में पहल करना, तो इसमें लिखा है कि आप अखलाक में भी दूसरों से बढ़ चढ़ करके थे, सलाम करने में पहल करते थे, अपने साथियों को भी तलकीन किया करते थे, ठीक है, के सलाम में पहल करने वाले बने। एक मरतबा देखा कि लोग हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को बढ़ बढ़ करके सलाम कर रहे हैं, क्योंकि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे उनका इल्म के अंदर बड़ा मुकाम था, ठीक है, खुसूसी नबी अलैहि सलाम की दुआ पाने वाले छोटे साहबा में से थे, तो लोग उनको सलाम कर रहे थे। तो उस पर अबू बकर सिद्दीक ने उनसे फरमाया कि लोग तुम्हें सलाम करने में पहल कर रहे हैं, तुम क्यों पहल नहीं करते ताकि तुम्हें सवाब ज्यादा मिले। राइट, जो सलाम में पहल करता है उसको ज्यादा सवाब मिलता है। इसके बाद हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का मामूल बन गया कि हर किसी को सलाम में पहल किया करते थे, ठीक है, बड़ों की बात मान लेते थे और उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करते थे, उन्होंने पहल करनी शुरू कर दी। तो हमें भी चाहिए कि हम सलाम में पहल किया करें, इसमें कंजूसी कंजूसी नहीं किया करें, ठीक है, सलाम के अंदर कंजूसी नहीं करनी चाहिए। एक दफा हमारे पास शादी से पहले की बात है, अकेला रहता था मैं एक अपार्टमेंट में, तो हमारा एक दोस्त जो है ना वो मिलने के लिए आया हमें, वो अजीब थे, मतलब हम तो उस वक्त बहुत ही बिल्कुल बच्चे थे उनके सामने, वो काफी सीनियर थे। तो मेरे अपार्टमेंट के अंदर जो है ना वो कुछ ऐसा था कि जैसे ये छोटा सा किचन था, ओपन था सब कुछ, ये बेडरूम है, इधर जो है वो ड्राइंग रूम है, इधर जो है वो किचन है, बीच में एक पिलर सा है। अब वो जो है ना वो किचन में इधर से दाखिल हो, उधर से निकले अस्सलाम वालेकुम, फिर पिलर के इधर से यूं करके घूम के अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा क्या है मसला है इनके साथ, ये क्यों इतना सलाम कर रहे हैं, हमें उसको इतना पता नहीं था, ठीक है। तो वो हर वो सलाम हत्ता कि कुछ जो है ना वो कोफ सी होनी शुरू हो गई, लेकिन बाद में पता चला कि सहाबा कराम भी ऐसे ही करते थे, राइट, और वो सहाबा को कॉपी कर रहे थे, कोई बुरी बात नहीं कर रहे, बहुत अच्छी बात कर रहे थे और खूब सवाब कमा रहे थे सलाम कर करके, ठीक है। तो बहरहाल कम अज कम इतना तो करें ना कि हम जब मुलाकात हो रही है उसको तो सलाम करें ना, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक और हजरत के अहवाल में से कि आप हल्के पुल फुल्के मजाक के भी कायल थे, मजाक वगैरह भी करते थे। एक मरतबा हजरत हसन रतान बच्चों के साथ खेलते हुए नजर आए, तो उस वक्त हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला भी आपके साथ ही थे, तो आपने हसन रज़ी अल्लाह तआला को मोहब्बत से गोद में उठा लिया और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला की तरफ देखते हुए फरमाया कि ए वो जो के नबी के मुशाबे है और अली के मुशाबे नहीं है, ए वो, यानी हसन रज़ी अल्लाह तआला को फरमा रहे हैं लेकिन देख अली रज़ी अल्लाह तआला की तरफ रहे कि ए वो जो के नबी अलैहिस्सलाम के मुशाबे है, अली के मुशाबे नहीं है। हसन रज़ी अल्लाह की जो शक्ल सूरत थी वो नबी अलैहिस्सलाम की बिल्कुल कॉपी थी, बिल्कुल आप के, और हसन रज़ी अल्लाह की जुर्रियत में, उनके खानदान में आगे जा करके एक आएंगे, वो हसन रज़ी अल्लाह की औलाद में से होंगे और उनकी भी शक्ल सूरत नबी, उनकी भी नबी अलैहिस्सलाम की जैसे, ठीक है, तो बहुत ज्यादा मुशाबहत। बहरहाल तो ये हल्का फुल्का सा मजाक हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु कर लिया करते थे। और फिर आखिरी बात ये कि आपके घर वालों के बारे में कुछ तफसीलात पढ़ के फिर हम मुकम्मल करते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने 4 शादियां करी, ठीक है, 2 शादियां इस्लाम लाने से पहले करी थी और 2 शादियां इस्लाम लाने के बाद करी, ठीक है। ये फैक्ट्स हैं कुछ, तो हमें याद रखना चाहिए, अगर लिखने के लिए कोई चीज़ है तो लिख भी लें अपने पास। 2 इस्लाम से पहले शादियां करी थी, वो कौन थी? हजरत कतीला, नहीं बल्कि कतीला बिनते अब्दुल इज्जा, कतीला बिनते अब्दुल इज्जा उज्जा अब्दुल उज्जा, और दूसरी थी उम्मे रोमान रजी अल्लाह ताला अन्हा, ठीक है ना। ये इस्लाम लाने से पहले, और इस्लाम नबी अबू बकर सिद्दीक कब लेकर आए थे? जब नबी अलैहिस्सलाम ने बेसत का ऐलान किया, बस अबू बकर सिद्दीक इस्लाम लेकर के आ गए, तो गोया के बिल्कुल साथ साथ ही जी। हाँ, वो भी बता रहे हैं आप लोगों को कि कतीला जो है ना, इनका कंफर्म नहीं है कि ये मुसलमान हुई थी कि नहीं हुई थी, ठीक है, लेकिन उम्मे रुमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इनका कंफर्म है कि ये मुसलमान हो गई थी, सही है। फिर इस्लाम लाने के बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की बाद में 2 और शादियां हुई थी, एक का नाम जो था वो अस्मा बिनते अमीस, अस्मा बिनते अमीस, ठीक है, रजी अल्लाह ताला अन्हा, और दूसरी हबीबा बिनते खारिजा रजी अल्लाह ताला अन्हा। अस्मा बिनते अमीस और हबीबा बिनते खारिजा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये दोनों मुसलमान ही थी, ठीक है, क्योंकि फिर तो हुक्म भी आ गया था ना बाद में कि कोई मुसलमान जो है वो मुशरिका से शादी नहीं कर सकता, ठीक है, तो फिर इन्होंने जो शादी करी वो मोमिना औरतों से ही शादी करी। अच्छा, ये तो हो गई इनकी 4 बीवियां, जिनमें से 3 का कंफर्म है कि वो मुसलमान थी, लेकिन 1 का जो है वो कंफर्म नहीं है कि वो मुसलमान हुई थी कि नहीं हुई थी, कतीला, ठीक है। अच्छा, फिर औलाद कितनी हुई? औलाद हुई 3+3, 3 लड़के और 3 लड़कियां, सही है। अच्छा, लड़कियां यानी बेटियां अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज्यादा मशहूर हैं, ज्यादा लोगों को उनके बारे में पता होता है, तो हम उनका पहले जिक्र करते हैं कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की जो सबसे ज्यादा मशहूर साहिबजादी हैं वो जाहिर है उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर भी बेटी ही मशहूर है ज्यादा, अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा, ठीक है, और तीसरे नंबर पर थी एक उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह ताला रहमतुल्ला अलैह, बल्कि रहमतुल्ला अलैहा, ठीक है। ये 3 बेटियां हो गई, और 3 बेटे थे, एक अब्दुल रहमान, एक अब्दुल्ला और एक मोहम्मद। अब्दुल रहमान, अब्दुल्ला, मोहम्मद, ये 3 बेटे थे, 3 बेटियां, आयशा, हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा और उम्मे कुलसूम रहमतुल्ला अलैह, ठीक है, अलैहा। अच्छा, अब ये कौन किस वाली माँ की बेटी थी? यानी बीवियां तो 4 थी ना, और औलाद जो है वो 6 थी। अब इसको याद करने के लिए चार्ट वगैरह, वो बोर्ड वगैरह तो अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको इस तरह से बताएं कि याद भी रह जाए। तो पहली बीवी कतीला, ठीक है, तो कतीला से जो है वो 1 बेटे और 1 बेटी, 3 बेटे भी सहाबी थे या नहीं? हाँ, 3ों बेटे सहाबी थे और 2 बेटियां सहाबियां थी, ठीक है, लेकिन तीसरी बेटी सहाबी नहीं थी। तो कतीला से कौन कौन थी? अस्मा और अब्दुल रहमान, नहीं, अस्मा और अब्दुल्ला, अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा और अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला, ये कतीला की औलाद, ठीक है। अच्छा, फिर कतीला के बाद उम्मे रोमान रजी अल्लाह तआला अन्हा आती हैं, तो उम्मे रोमान रजी अल्लाह तआला अन्हा से हजरत अब्दुल रहमान और हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा, ठीक है, अब्दुल रहमान और आयशा, ये सगे भाई बहन थे, ठीक है, और अस्मा और अब्दुल्ला ये सगे भाई बहन थे, ठीक है। अच्छा, अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा से तीसरे, बल्कि तीसरे भी थे, हाँ सॉरी, अस्मा बिनते अमीस रज़ियल्लाहु अन्हा, अस्मा बिनत अमीस जो तीसरी बीवी थी ना, उनसे फिर मोहम्मद रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। ठीक है। अच्छा, और हबीबा बिनत खारिजा का जो है वो हमारे पास कोई रिकॉर्ड इस वक्त नहीं है कि उनसे जो है कौन सी औलाद। ये हो गए 2 3 4। उम्मे कुलसूम का लिखा हुआ नहीं है कि वो कौन सी वाली बीवी से थे, अगर किसी को पता हो तो बता सकते हैं। तो ये अबू बकर सिद्दीक रतान की औलादें थी। अब इन औलादों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। काफी तेज आवाज होती, थोड़ी देर के लिए अजान के लिए रुक जाता।
Recording stopped.
खत्म हो, आप साथ साथ देते रहते हैं, और उसके बाद जब खत्म हो जाए तो नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ना, और उसके बाद फिर ये अजान की जो दुआ मसमून दुआ है उसको पढ़ना, ये हम लोग याद कर लें। ठीक है। अच्छा तो ठीक है भाई, औलादों का समझ में आ गया। लेकिन अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी तफसील क्या है कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप सबको पता है कि उम्मुल मोमिनीन थी, और नबी अलैहिस्सलाम के साथ इनका जो निकाह हुआ था ये तीसरे नंबर पर हुआ था। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा पहला पहली बीवी थी। दूसरा जिनसे निकाह हुआ था वो हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी, और तीसरा जिनसे निकाह हुआ था वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। ठीक है। बाकी जितनी भी बीवियाँ थीं उन सब के पहले निकाह हो चुके थे, शादियां हो चुकी थी, और फिर उनके शौहरों का इंतकाल हो चुका था, तो वो बेवाएं थी सारी की सारी, और नबी अलैहिस्सलाम ने बाद में इनसे शादी करी थी। लेकिन आयशा सिद्दीक रहता वो वाहिद बीवी थी कि जो के बेवा नहीं थी, वो कंवारी थी। ठीक है। और उसके अलावा उनकी बड़ी और भी शान अजमत, बहुत बड़ी जो है वो आलिमा थी, हाफिजा थी, कुरान मजीद की हाफिजा थी, हदीस मुबारका की हाफिजा थी, बहुत सारी अहादीस जो है वो आयशा सिद्दीक रहता से मरवी हैं, और उम्मत को उन्होंने बहुत ज्यादा इल्म सिखाया जो नबी अलैहिस्सलाम के पर्सनल लाइफ से मुताल्लिक था, घर की लाइफ से मुताल्लिक था, और उसके अलावा बहुत सारे फतवे वगैरह भी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने दिए थे। फिर उसके बाद उनके बाद हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा, ये आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से उम्र में बड़ी थी, और ये कतीला की बेटी थी। ठीक है, कतीला से थी ये, और इनकी शादी जो है वो हजरत जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह ताला अन्ह से हुई थी। जो कि इनकी क्या खासियत है, जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह की खासियत में से कोई एक खासियत,
अच्छा
अशरा मुबशरा में से थे, और कोई नहीं, ये मुंह बोले बेटे नहीं थे, वो भी जैद थे, और उनका नाम ही जो है वो कुरान मजीद में आया था, जैद रजी अल्लाह ताला का। तो जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह जो है ये अशरा मुबशरा सहाबा में से थे, पुप्पीजाद भाई भी थे नबी अलैहिस्सलाम के। ठीक है। सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ये बेटे थे। अच्छा, अस्मा रज़ी अल्लाह ताला जो है वो बहुत ही यानी बहादुर सहाबिया थी, और ये वही थी जब नबी अलैहिस्सलाम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह के साथ हिजरत का सफर कर रहे थे, तो अस्मा रज़ी अल्लाह ताला के जिम्मे ये ड्यूटी लगाई थी कि वो खाना पहुंचाएंगी। ठीक है। तो अस्मा रज़ी अल्लाह ताला जो है वो एक दिन अपना तोशा, इंडिया में तोशा कहते हैं ना हम लोग, लंच बॉक्स, अंग्रेजी हम ज्यादा हैं, हम ज्यादा अंग्रेज हैं पाकिस्तान, तो हम लंच बॉक्स कहते हैं, तो तोशा लंच बॉक्स, तो उसको जो है ना वो बांधने के लिए कोई चीज थी नहीं, तो इन्होंने जो है ना अपना पट्टा जो कि यहाँ पे जमाने में लोग बांधा करते थे, पट्टा उतारा, उसको जो है वो चीरा, दो टुकड़े किए, और उससे जो है ना वो तोशादान को जो है वो बांध लिया। ठीक है। तो जब पता चला नबी अलैहिस्सलाम को, आप सोसम ने क्या लकब दिया था, जू नता नतकैन, जू नतकैन के दो नतको नतक वाली, यानी दो 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 रस्सियों वाली या दो टुकड़ों वाली। ठीक है, क्योंकि अपने पट्टे का उन्होंने दो टुकड़े कर लिए थे, और उससे जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के तोशे को बांध लिया था, तो ये उनकी जो है ना वो अलकाब में से एक लकब बन गया था अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा का। इनको जो है वो अबू जहल ने रास्ते में देखा वापस आते हुए कहीं से, तो वो समझ गया कि ये जरूर जो है ना अपने अब्बा से और अब्बा के साहेब नबी अलैहिस्सलाम से मिल करके आ रही हैं, तो पकड़ लिया और पूछा कहाँ है तुम्हारे बाप। मैंने कहा मैं तुम्हें हरगिज नहीं बताऊंगी। उसने कहा बताओ वरना मैं तुम्हें मारूंगा, तुम कुछ भी करो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी कहाँ है नबी अलैहिस्सलाम। ताकि अबू जहल को गुस्सा आया, उसने जोर से जो है ना इनको जो मारा तो ये गिरी जा करके और इनका चेहरा जो है वो पत्थर से जा करके लगा और इनका खून बहना शुरू हो गया, जख्म आ गया इनके चेहरे के ऊपर। तो अगले दिन जो है नबी अलैहिस्सलाम ने देखा, उस वक्त पर्दे के अहकाम तो नहीं आए थे, नबी अलैहिस्सलाम ने उनको देखा तो ये जख्म कैसा है, तो उन्होंने फिर पूरी स्टोरी सुनाई कि अबू जहल ने जो है वो मुझे इस तरीके से मारा था, द वन ऑफ द टू रोब्स। हाँ, उसका तर्जुमा अंग्रेजी में ऐसे ही बनेगा। अच्छा, फिर उसके बाद अस्मा रज़ियल्लाहु, और तीसरी बेटी कौन थी, उम्मे कुलसूम थी। उम्मे कुलसूम जो है ना ये अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु के इंतकाल के बाद पैदा हुई, ठीक है, तो इस वजह से ये सहाबिया तो नहीं थी, तो ये फिर ताबेईया, इसी वजह से रहमतुल्ला अलैहिम कहा जाएगा, ताबेईया थी। अच्छा, बेटों में अब्दुलरहमान बिन अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु सबसे बड़े बेटे थे, ये शुरू में इस्लाम नहीं लेकर के आए थे, ठीक है, ये उम्मे रोमान रज़ियल्लाहु से थे, ये गजवे बदर के अंदर कुफार के लश्कर की तरफ से आए थे, ठीक है, और गजवे उहद के अंदर भी कुफार के लश्कर की तरफ से ही आए थे। गजवे बदर के अंदर सबसे बड़ा जो जो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट सबसे बड़ा गजवा जो था वो गजवे बदर ही था, तो इसके अंदर सबसे सबसे बड़ी आजमाइश मुसलमानों के ऊपर जो आई थी वो क्या थी, गजवे बदर के अंदर सबसे बड़ी आजमाइश गज़वे बदर के अंदर क्या थी मुसलमानों के ऊपर जो आई थी। जी मुसलमान
लड़ाई की नीयत से नहीं निकले थे, करनी पड़ी।
लड़ाई की नीयत से नहीं निकले थे लेकिन उनको करनी पड़ गई थी, लेकिन शायद ये सबसे बड़ी आजमाइश नहीं थी। अच्छा,
उनके पास हथियार बहुत कम चाहिए थे,
जी
खानदान वालों से लड़ना पड़ता।
जी सबसे बड़ी आजमाइश जो थी ना वो ये थी कि इनके देवर अप अगेंस्ट, है ना, इनके मुखालिफ जो थे वो इनके सगे थे, इनके खानदान वाले थे, ठीक है, और इनको उनके साथ उनसे लड़ना था, ठीक है। तो ये जो होती है ना, ये तो जंगजू कस्म के लोग थे, बहादुर कस्म के लोग थे, इनको तो लड़ना वड़ना तो इनके बाएं हाथ का काम था ना, जैसे माशाल्लाह आपने जो कुछ कहा लड़ना वड़ना तो बाएं हाथ का, हर चलते फिरते इधर मार दिया इधर मार दिया, राइट, मारपीट तो कोई बात ही नहीं है। तो ये अरब लोग जो थे तो जंगजू कस्म के कबाइल थे, वहशी जंगजू इस तरह कहते हैं, लड़ना बढ़ना, ये 5 5 साल 100 साल लड़ रहे हैं, 30 साल लड़ रहे हैं छोटी सी बात के ऊपर, ठीक है, लड़ना वड़ना कोई इतना बड़ा मसला नहीं था इनके लिए। मसला ये था कि किसी का बाप सामने है, किसी का बेटा सामने है, किसी का भाई सामने है, किसी का चचा सामने है, किसी का पुप्पा सामने है, राइट, और इनसे जो है वो लड़ाई हो रही है। तो अब्दुलरहमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो इनका भी ये मामला था कि इनके खिलाफ दूसरी तरफ कौन थे, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफ कौन थे, अब्दुलरहमान। तो बाद में जब ये मुसलमान हुए ना, इन्होंने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक दिन कहा कि बदर के दिन ना आप मेरे सामने आते थे और मैं आपको अवॉइड करके निकल जाता था क्योंकि आप मेरे बाप थे, राइट, तो मैं आपको अवॉइड करता था। अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया, अगर तुम मेरे सामने आते ना मैं तुम्हें नहीं छोड़ता, मैं तुम्हें नहीं छोड़ता, ठीक है ना। तो किसकी निस्बत ज्यादा मजबूत थी अपने आइडियोलॉजी के साथ, किसकी निस्बत ज्यादा मजबूत थी, किसका ताल्लुक ज्यादा मजबूत था, राइट, अबू बकर सिद्दीक का अपनी आइडियोलॉजी के साथ, अपनी फिक्र के साथ, अपनी सोच के साथ, अपने दीन के साथ कौन ज्यादा पक्का था, अबू बकर सिद्दीक रतान ज्यादा पक्के थे, अब्दुलरहमान ज्यादा पक्के नहीं थे कुफर के साथ। अनफॉर्चुनेटली आज बिल्कुल उल्टा मामला है, अनफॉर्चुनेटली आज बिल्कुल मामला उल्टा हो चुका है, आज दुनिया वाले अपनी आइडियोलॉजी के साथ पक्के होते हैं, पक्के होते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते अपने दुनिया की मोहब्बत से, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते अपने कल्चर्स को, अपने रसूम को, अपनी आदतों को, अपने गुनाहों को, अपने मोहब्बतों को, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। लंबी लंबी दाढ़ी वाले मौली साहब, टोपी वाले और बुरके वालियां, राइट, जरा कोई मसला पड़ा फौरन पर्दा उतार दिया, जरा मसला पड़ा फौरन जो है वो दीन छोड़ दिया, जरा मसला पड़ा फौरन जो है वो गुनाह के काम के अंदर लगना शुरू हो गया, फौरन झूठ बोलना शुरू हो गया। क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है इसका, हमारा ताल्लुक दीन के साथ मजबूत नहीं है लेकिन उनका ताल्लुक दुनिया के साथ मजबूत है। भाई वो क्यों नहीं कॉम्प्रोमाइज करते कि मौलवी साहब को देख करके वो जो है वो गुनाह करना छोड़ दें, वो देख करके जो है ना वो दीनदार साहब आए, दाढ़ी वाले साहब आए, बुरके वाली साहब आई हैं, चलो हम म्यूजिक बंद कर देते हैं, वो म्यूजिक बंद नहीं करते, राइट, वो अपना नाच गाना बंद नहीं करते, वो अपनी बेहयाई बंद नहीं करते, वो अपना टीवी बंद नहीं करते, क्यों नहीं करते, वो मजबूत है, और हम जो है फौरन से कॉम्प्रोमाइज क्यों कर लेते हैं, क्योंकि हमारा ताल्लुक मजबूत नहीं होता है, हम फौरन से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। राइट, वी शुड आस्क आवरसेल्व्स व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम। हम क्यों किसी को, किसी दुनिया वाले को खुश करने के लिए झूठ बोलना शुरू कर देते हैं? क्यों भाई, झूठ अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, अल्लाह ताला ने हराम किया है, मना किया है, ठीक है, तो हमने तो नहीं करना ना ये। अब इसका इतना कच्ची नस्बत होगी दीन के साथ, तो फिर अल्लाह रहम करे, कहीं ऐसा ना हो कि मरने से पहले जो है खत्म ही हो जाए बिल्कुल, और फिर जो है ना सारी जिंदगी इस्लाम पे गुजारी, और मरने से पहले जब इतना से दूर रहे तो इस्लाम खत्म, और काफिर होकर के मर रहे हैं। कयामत के दिन तो फिर काफिर उठाए जाएंगे, कयामत के दिन यरमुकल्ला, कयामत के दिन फिर मुसलमान नहीं उठाए जाएंगे, काफिर उठाए जाएंगे, सारी नमाजें जीरो हो जाएंगी, सारी नमाजें जीरो हो जाएंगी, सारी इबादतें जीरो हो जाएंगी, सारा दीन का इल्म जीरो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो अब्दुलरहमान रतान जो है फिर हुदैबिया के मौके पर इस्लाम लाए, और फिर मदीना मुनव्वरा आकर के अपने वालिद मोहतरम के साथ रहने लगे। ये बड़े जबरदस्त तीरंदाज थे। गजवा हुदैबिया के बाद जितने गजवात आए और जंगें वगैरह इनको मिली ना, उन्होंने बड़ा जबरदस्त उसके अंदर किरदार अदा किया, और ये बड़े जबरदस्त तीर अंदाज थे, ठीक है, हत्ता कि जंगे यमामा के अंदर भी इन्होंने तीर मार मार करके दुश्मनों को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। अच्छा, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और ये जो है सगे बहन भाई थे, दोनों को एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत थी, बहन भाइयों की जैसी होती है, और 53 हिजरी में इनका इंतकाल हो गया। तो आयशा सिद्दीक़ा इनकी वफ़ात के ऊपर बड़े दर्दनाक अशआर पड़े, क्योंकि वो बड़े जबरदस्त शायरा थी। अच्छा, दूसरे बेटे जो थे अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन, ये अगरचे के कतीला की औलाद थे, और कतीला का कोई कंफर्म भी नहीं है कि वो मुसलमान भी हुई थी कि नहीं हुई थी, लेकिन ये फौरन मुसलमान हो गए। जैसे ही अबू बकर सिद्दीक मुसलमान हुए, नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया अबू बकर सिद्दीक मुसलमान हो गए, ये फौरन, ये भी शुरू के लोगों में से थे जो मुसलमान हो गए थे, अब्दुल्ला, ठीक है, और इनकी बहन जो है वो अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा, ये भी जो है वो इब्तदाई मुसलमान खवातीन में से थी। अच्छा, हिजरत के सफर में आपने सुना है ना कि हिजरत के सफर में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा जो है उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को जो है, जो जो मुसलमान हो गए थे उन सबको जो है ना वो खिदमत पे लगा दिया, ठीक है। तो अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो है वो खाना पहुंचा रही थी, और अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो है ये खबरें ले ले करके आते थे, जासूसी करके ना, कि मक्का मुकरमा वाले क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या पकड़ने के लिए जो है वो तदबीरें कर रहे हैं, किसका इनाम कितना रख रहे हैं, ये सारी खबरें सुन सुन करके ये गारे सौर में आकर के इन लोगों को बताते थे, अबू बकर सिद्दीक पठान और नबी अलैहिस्सलाम को, ठीक है। और ये जो है जब नबी अलैहिस्सलाम ने हिजरत कर ली थी, तो उसके बाद फिर ये अपनी दूसरी वालदा उम्मे रोमान रज़ियल्लाहु अन्हा, जो कि सौतेली वालदा थी, और आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा और अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा को लेकर के इन्होंने फिर हिजरत करी थी, ठीक है। हुनैन और ताइफ के गजवात में शरीक रहे, ताइफ के मार्के में उन्हें एक तीर लगा, इससे वो शदीद जख्मी हो गए। इलाज के बाद जख्म तो ठीक हो गया, लेकिन तकरीबन 2.5 साल के बाद दोबारा से उनका जख्म जो है वो रिलैप्स हो गया, भरा हो गया, और नबी अलैहिस्सलाम की वफात के 40 दिन के बाद इनकी भी वफात हो गई, ठीक है। तो अब्दुल्ला रतान जो है वो दूसरे बेटे थे, और तीसरे बेटे मोहम्मद बिन अबू बकर, मोहम्मद बिन अबी बकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा के सबसे छोटे बेटे थे, ये अस्मा बिनते अमीस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बदन से थे, उनसे ये थे। और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हा की वफात के बाद उनकी वालिदा अस्मा बिनते अमीस ने हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से शादी कर ली थी, ठीक है। तो अब इनकी परवरिश पर किसने करी थी, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इनकी परवरिश करी थी, क्योंकि इनके वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया था, ठीक है। तो देखें इतना क्लोज होते थे ये सहाबा सब ना, अली अतान जो है वो अबू बकर सिद्दीक अतान की बेटी बेटे की परवरिश कर रहे हैं, बीवी से जो है वो शादी कर रहे हैं, ठीक है। और प्रोपेगेंडा करने वाले क्या कि अली अतान जो है वो नाराज थे, और जो है ना वो उनका हक मार दिया गया था, और अबू बकर सिद्दीक अतान ने नाउज बिल्ला ये कर लिया था, वो कर लिया था, सारा का सारा झूठ, सारा का सारा झूठ है, ठीक है। अच्छा, मोहम्मद बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन जब ये बड़े हुए तो अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में जब वो खलीफा बने तो इनको मिस्र का जो है ना वो वाली यानी केयर टेकर बना करके मिस्र भेजा था। लेकिन जब ये मिस्र पहुंचे तो एक जंग में वहां पर ये शहीद हो गए। तो आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को ये खबर मिली तो बहुत रंज हुआ और उनके बेटे कासिम को अपनी तरबियत में ले लिया। ठीक है, इनके बेटे कासिम थे, ठीक है, कासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो इनको ना फिर आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा जो कि इनकी क्या थी, फुप्पी थी, राइट। तो फुप्पी ने जो है वो अपनी तरबियत में ले लिया और फुप्पी भी कैसी थी, राइट, ऐसी आलिमा, ऐसी फाजला, ऐसी मुत्तकिया, ठीक है। तो जब उनकी तरबियत के अंदर कासिम बिन मोहम्मद रतान रहे ना तो ये फिर फुकहाए मदीना में इनका शुमार होता है, ठीक है ना। मदीना मुनव्वरा के इतने बातें नहीं करें ना भाई, थोड़ा सा बस खत्म होने वाली क्लास। तो 7 फुकहाए मदीना जो है वो मशहूर हैं, 7 फुकहा, उनमें से एक जो थे ये थे कासिम बिन मोहम्मद, ठीक है। और हमारे नक्शबंदी सिलसिले के जो एक चेन बनती है, अगर आप लोगों ने देखी हो, अब तो वो चार्ट की शक्ल में भी प्रिंट होकर के आ गई है कि हजरत जी का नाम आता है, फिर उनके ऊपर हजरत मुर्शिद आलम रहमतुल्लाह आलम है, फिर उनके ऊपर ख्वाजा अब्दुल मालिक सिद्दीक रहमतुल्लाह आलम है, राइट। चलते 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 ये ऊपर जो जाती है तो हजरत जाफर सादिक रज़ियल्लाहु के ऊपर हजरत कासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर का नाम आता है, ठीक है। और इनके ऊपर हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम आता है, और उनके ऊपर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम आता है, फिर उनके ऊपर नबी अलैहिस्सलाम का नाम आता है। तो ये चेन इवन नक्शबंदी सिलसिले की भी जो है वो कासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के थ्रू होते हुए हम तक पहुंचती है। तो जब हम मुराकबे में बैठते हैं ना और हम नीयत करते हैं, अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है, ठीक है, तो दरअसल हमारी नीयत की तफसील ये होती है कि अल्लाह ताला की रहमत नबी अलैहिस्सलाम के कल्ब मुबारक पर आ रही है, आप ससम के कल्ब मुबारक से अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला के कल्ब मुबारक में जा रही है, वहां से हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला के कल्ब मुबारक में जा रही है, वहां से हजरत कासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला के कल्ब मुबारक में जा रही है, फिर वहां से नीचे होते 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 हमारे शेख और फिर उनके कल्ब से हमारे कल्ब में आ रही है। तो ये तफसीली नहीं है, तो असल में इसकी तफसील ये है, इसकी डिटेल ये है, ठीक है। तो इनका पढ़ करके फिर बस चंद अशार आपको सुनाने थे और फिर क्लास खत्म हो जाएगी, डोंट वरी। हमें अंदाजा है कि चार चार क्लासे होंगी, पहले तो माशाल्लाह 2 होती थी, 1 होती थी, फिर 2 हो गई, फिर 2 के बाद 3 हो गई, और आज जो है माशाल्लाह 4 क्लासेज हो गई और 4 मुख्तलिफ सब्जेक्ट जो है वो आपको पढ़ने पड़ते हैं बैठ करके। अल्लाह ताला आप लोगों के इस हौसले को कबूल फरमाए और इससे आप सबको फायदा पहुंचे, हमें भी फायदा पहुंचे इससे। तो बस ये अशार जो है ना वो हमारे हजरत के साहिबजादा साहब मौलाना सैफुल्ला साहब ने अपनी किताब के अंदर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु की शान के अंदर लिखे हैं, उनके अपने अशार नहीं है। पहले तो उन्होंने लिखा हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का शेर कि आ आमन नासा बर मौला इमा, ठीक है, कि इंसानों में सबसे ज्यादा मेरे आका के ऊपर एहसान करने वाले है अबू बकर। आ, ठीक है, जैसे पुकार रहे हैं ना, आ अमन नासा, एहसान करने वाले इंसानों में, अमन नासी, ठीक है, इंसानों में से सबसे ज्यादा एहसान करने वाले, अमन नासी बर मौला इमा, मेरे मौला हजरत नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर सबसे ज्यादा एहसान करने वाले इंसानों में से, ठीक है। ए कली में अव्वले सीना इमा, ए कली में अव्वले सीना इमा, यानी मेरे जो कोहितूर, मेरे नबी अलैहिस्सलाम कोहितूर की मानिंद हैं, ठीक है। तो कोहितूर के ऊपर जब अल्लाह ताला की तजल्ली पड़ी ना, ठीक है, तो वो जो तजल्ली थी उसके सबसे पहले जो देखने वाले थे ना वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, ठीक है, सबसे पहले ईमान लाने वाले, सबसे पहले उसको कबूल करने वाले। और फिर उसके बाद एक हजरत जी के खलीफा साहब भी हैं, शायद उनको खिलाफत है या मुरीद हैं, अंजुम नियाजी दामत बरकातुहुम, खलीफा ही हैं बहरहाल, शेख अंजुम नियाजी दामत बरकातुहुम, तो उन्होंने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए ये अशआर लिखे हैं। फरमाते हैं, पयाम्बर तू ना था लेकिन पयाम्बर जैसा लगता था, पैगम्बर तो तू ना था लेकिन पैगम्बर जैसा लगता था, वो दरिया था मगर गहरे समंदर जैसा लगता था, ठीक है ना। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु आप थे तो दरिया लेकिन गहरे समंदर जैसे लगते थे, समंदर तो गोया कि नबी अलैहिस्सलाम थे, और समंदर में से जो दरिया निकलता है वो आप उस दरिया के मानें।
कुछ ऐसी ताजगी थी उसके चेहरे पर कि वो सबको तुलुए सुबह के बेदाग मंजर जैसा लगता था। नबी का दौर याद आता था, उसके दौर में अक्सर नबी के बाद वो कंधे मुकर्रर जैसा लगता था। ठीक है, जैसे कि रिहर्ड, वो क्या कहते हैं उसको, रिपीट
रिवाइंड
रिपीट रिपीट टेलीकास्ट, रिपीट टेलीकास्ट। नबुवत का जो जमाना था वो गोया के रिपीट हो रहा है हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में। नबी के बाद वो कंधे मुकर्रर जैसा लगता था, जमीन सिमटी चली जाती थी उसकी फौज के आगे, हर एक खिदमत गुजार उसका उसका सिकंदर जैसा लगता था। हर एक खिदमत गुजार उसका सिकंदर जैसा लगता था। सिकंदर आजम बहुत बड़ा फातह गुजरा है, ठीक है, तो वो जैसे दुनिया को फतह करने के लिए निकला था ना, उसी तरह अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की फौज का हर सिपाही गोया के दुनिया को फतह करने के लिए निकला था। और फिर फरमाते हैं, तुझे लाकर दिखाना था बशर ऐसे भी होते हैं, तुझे लाकर दिखाना था बशर ऐसे भी होते हैं, खुदा ने ये बताना था बशर ऐसे भी होते हैं, सितारों से ज्यादा खूबसूरत नेकियां देकर, सितारों से ज्यादा खूबसूरत नेकियां देकर यही बावर कराना था बशर ऐसे भी होते हैं। इतनी नेकियां, पिछली दफा सुना था ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा आज जो है वो ये वाली नेकी किसने की, आज ये वाली नेकी किसने, हर सवाल के जवाब में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ही को जवाब देना पड़ा, अल्लाह के मैंने मैंने ये वाली नेकी आज करी। ठीक है, तो सितारों से ज्यादा खूबसूरत नेकियां देकर यही बावर कराना था बशर ऐसे भी होते हैं, पहाड़ों से ज्यादा सोने चांदी को जो ठुकरा दे, पहाड़ों से ज्यादा सोने चांदी को जो ठुकरा ठुकरा दे, दिलों में ये दिखाना था बशर ऐसे भी होते हैं। खलीफा हो के भी फाका कशी की लज्जतें मांगी, फरिश्तों को दिखाना था बशर ऐसे भी होते हैं, यकी आता न था उनको बशर जिनको बशर की पाकबाजी का, यकी आता न था जिनको बशर की पाकबाजी का, किनको यकीन नहीं आता था, आप कसूस नबी में सुन चुके हैं, फरिश्तों को, ऐ अल्लाह आपने ये क्या बना दिया, पहले वाले भी लड़ते थे अभी भी आकर के लड़ेंगे, क्या करेंगे हम आपके हैं ना पाकबाजी बयान करने वाले, उनको यकीन नहीं आता था कि इंसान भी जो है वो कर सकते हैं सारे काम अच्छे काम। तो जिनको यकीन आता न था जिनको बशर की पाकबाजी का, सबक उनको पढ़ाना था बशर ऐसे भी होते हैं, समंदर से ज्यादा तुझको दिल की वसअतें देकर समंदर को बताना था बशर ऐसे भी होते हैं। कदम रखे जमी पर तो जमी हिलने लगी सारी, ये लोगों को जताना था बशर ऐसे भी होते हैं। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بس